मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 26 दिसंबर 2016 है और आज के इस FEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का पूरे उत्साह और ताजगी के साथ बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि सैटरडे की छुट्टी और संडे की उत्सव धर्मिता ने आपके अंदर एक नए तरह के टटकेपन को जन्म दिया होगा। संडे आपके लिए विशेष इसलिए था क्योंकि उस दिन हमारे देश का एक बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत उत्सव भी था, क्रिसमस। आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और जो आपके घर में डेफिनेटली वो सांता क्लॉज भी आए होंगे। तो मित्रों, आइए आज हम फिर कुछ इसी तरह की एक बात लेकर के उस पर बात करते हैं और वह भी कहीं न कहीं उम्मीदों, ना उम्मीदों, उम्मीदों और आशा और निराशाओं की ही बातें हैं। जैसे कि सांता क्लॉज एक आशा लेकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं, जो हम चाहते हैं हमारी इच्छाओं को वो पूरा करते हैं। उसी तरह से मित्रों, जिंदगी में भी हमारी बहुत सी आशाएं होती हैं जो निराशाओं में बदल जाती हैं, बहुत सी उम्मीदें होती हैं जो नाउम्मीदों में बदल जाती हैं। तो इस तरह का द्वंद लगातार चलता रहता है और आप में से ही मेरे किसी प्रिय शिष्य ने, प्रिय स्टूडेंट ने मुझे यह विषय सुझाया है, तो मैं आज आप लोगों के द्वारा सुझाए गए विषय को ही लेकर अपनी बात कर रहा हूं। मित्रों, इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, मैं एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूं। सूचना यह कि कल संडे का दिन था, क्रिसमस भी था, तो हम लोगों ने भी क्रिसमस को दंगल फिल्म के माध्यम से मनाया। हम लोगों ने दंगल फिल्म देखी और जिस मॉल में हम लोग फिल्म देखने गए थे वहां पर क्रिसमस का तो पूरा माहौल था। वो क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज की बड़ा खूबसूरत पुतला और माहौल बड़ा ही, मतलब आप कह लीजिए उमंगों से भरा हुआ था। तो हमारे लिए वही क्रिसमस रहा और मित्रों को फिर शुभकामनाएं देनी। तो मित्रों, मैंने जब दंगल फिल्म देखी तो मुझे लगा कि दंगल फिल्म में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको आधार बनाकर हम लोग लाइफ मैनेजमेंट के कई टुकड़ों पर बात कर सकते हैं। और वैसे भी मित्रों, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे और अगर नहीं देखे होंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप लोग दंगल मूवी जरूर देखें। खासकर इसलिए कि वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत आपके अंदर एक उत्साह पैदा करेगी। मैं चाहूंगा कि आगे के लाइफ मैनेजमेंट में हम लोग दंगल मूवी पर कुछ बातें करें। वो बातें केवल उत्साह की ही बातें नहीं होंगी, प्रेरणा की ही बातें नहीं होंगी, मोटिवेशन की ही बातें नहीं होंगी, वो सही मायने में जीवन के सूत्रों की बात होंगी। और मेरी इन बातों को आप तभी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे यदि आपने दंगल फिल्म देख ली होगी। तो मित्रों, इसके लिए मैं आप लोगों को आज का वक्त दे रहा हूं, कल का भी वक्त दे रहा हूं, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे आप में से होते हैं जो शाम को या रात में इस ऑडियो को सुनते हैं। मोस्ट प्रोबेबली परसों से हम लोग दंगल फिल्म पर बात करना शुरू करेंगे। और मित्रों, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि प्लीज कोशिश करें कि किसी भी तरीके से आप दंगल मूवी देख लें तो मेरी बातों को समझने में आसानी होगी और सच बात तो यह है कि आपको मजा भी तभी आएगा। दोस्तों, इससे छोटी सी गुजारिश के बाद आइए अब मैं आज के लाइफ मैनेजमेंट वाले विषय पर बात करता हूं जो हमारे जीवन के आशा, निराशा, उम्मीद और नाउम्मीदों से जुड़ी हुई है। मित्रों, जब भी हम अपनी जिंदगी के बारे में कोई भी योजना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो डेफिनेटली उसके परिणाम हमारे दिमाग में होते हैं। हम असफल होने के लिए तो कोई काम करते नहीं है, बावजूद इसके कि हम ज्यादातर असफल ही होते हैं। लेकिन जो सफलता की जो कीमत है उसकी ऊंचाई इतनी बड़ी होती है कि अगर एक सफलता मिल जाए तो हमारी 99 असफलताएं उसमें खो जाती हैं, क्योंकि फिर असफलताओं को कोई याद नहीं करता। एक सफलता में इतनी बड़ी ताकत होती है, इसीलिए लोग उन 99 असफलताओं को बर्दाश्त करते रहते हैं सिर्फ उस एक सफलता के लिए। तो सीधी सी बात है मित्रों कि जब हमें सफलता नहीं मिलती है तो हमें निराशा होती है, या हम किसी पर बहुत यकीन कर रहे हैं, वो जब हमारा विश्वास टूटता है तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा दुख का एक तरीके से तूफान आने लगता है, अरे हमने तो ये नहीं सोचा था। तो जो जीवन में इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, आशा निराशा। मित्रों, तो अब इससे उबरा कैसे जाए? देखिए, आप इससे रहित तो नहीं हो सकते। अगर आप सोचें कि जीवन में ये घटे ही नहीं, तो उसका एक ही उपाय है कि जीवन का न रहना। जब तक जीवन है तब तक यह भी रहेगा। इसे हमें अपने जीवन का अनिवार्य अंग मान लेना चाहिए। और यदि आप एक अनिवार्य अंग मान लेते हैं, तो हमारे सामने फिर दूसरी चुनौती ये आती है कि हम इसका मुकाबला कैसे करें, इसके साथ सम रहना कैसे सीखें। देखिए, सीधी सी बात है कि जब हमें सफलता मिलती है तो हम उत्साह से भर उठते हैं, एक अच्छी बात है। और जब हमें सफलता नहीं मिलती है, जब हम निराशा के कुहासे में घिरते हैं, तो डेफिनेटली थोड़े देर के लिए हम एक तरीके से खो जाते हैं, लगने लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, जिंदगी खत्म हो गई है। ये सारे निराशा के भाव दिमाग में आते हैं, आएंगे ही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये भाव आए ही ना, वो एक बहुत उच्च स्तर की एक पद्धति है या जीवन प्रणाली है या मनोवैज्ञानिक स्थिति है जब कहा जा सके कि निराशा के भाव आएंगे ही नहीं, जो कृष्ण के साथ था। अदरवाइज तो अर्जुन के अंदर भी निराशा के भाव आते थे, आएंगे। केवल जो हम कर सकते हैं और जो हमें करना भी चाहिए वो ये है कि हम कैसे इस निराशा से अपने आप को कितनी जल्दी निकाल सकते हैं। ये नहीं कि फिर हम उसके ग्रिप में ही घिरे हुए हैं, क्योंकि अगर हमारी जर्नी जारी है तो मान करके चलिए कि जो कोहरा है ये छटेगा, ये परमानेंट तो होता ही नहीं है। जैसे आशा परमानेंट नहीं थी, सफलता परमानेंट नहीं थी, तो असफलता और निराशा भी परमानेंट नहीं होगा। दोस्तों, तो इसको हम कैसे अपने अंदर पैदा करें, उस चेतना को कैसे लाएं या उस सोच को कैसे डेवलप करें, इसके बारे में मैं आपको एक वैज्ञानिक सिद्धांत बता रहा हूं। एक छोटा सा वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बहुत सही भी है। और चूंकि मेरे इस प्रश्न को पूछने वाले मेरे स्टूडेंट क्लास के यहां के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा स्पेशली, और उसे मैं थोड़ा सा भी एक्सप्लेन भी करूंगा। और वह है मार्क्स का भौतिकवाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। बहुत सिंपल है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? द्वंद्व का मतलब एक ही साथ दो, लेकिन ये जो दो हैं ये एक ही जैसे नहीं है, ये दो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। द्वंद्व तो तभी होगा ना, लड़ाई तो तभी होगी जब एक दूसरे के विपरीत हो। मैच दो अलग अलग टीमों के बीच में खेला जाता है जिसमें से दोनों जीतना चाहती हैं, ये बात अलग है कि उसमें से जीतेगी। एक ही वॉकओवर, मतलब यूं कह लीजिए कि ड्रॉ करने की स्थिति तो कभी कभी आती है, नहीं तो उसको भी सिक्का उछाल करके कोई ना कोई फैसला किया ही जाता है। तो द्वंद का मतलब है दो, लेकिन परस्पर विपरीत, परस्पर विपरीत। इन दोनों में एक लड़ाई चल रही है, एक संघर्ष चल रहा है, लगातार संघर्ष चल रहा है, उसमें से कभी कोई जीतता है तो कभी कोई जीतता है। मित्रों, आप इस पूरे की पूरी प्रकृति को देखिए, पूरे के पूरे समाज को देखिए, पूरे के पूरे हमारी भावनाओं को देखिए, या आप कोई भी चीज उठाकर देख लीजिए ना, कोई भी चीज उठा करके देखिए, अगर वह चीज है तो उसकी विपरीत चीज भी वहां मौजूद है। सूरज कभी मरता नहीं है, लेकिन आपके साथ तो 24 घंटे नहीं रहता है, वो कहीं और चला जाता है जिससे रात हो जाती है। तो प्रकाश है तो अंधकार भी है, आशा है निराशा भी है, सुख है दुख भी है। याद रखिए कि अगर एक चीज होगी, जैसे मान लीजिए कि मैं सुख चाहता हूं, मैं हमेशा आशा ही चाहता हूं, मैं हमेशा अच्छाई ही चाहता हूं, तो मेरे लिए उसकी कोई वक्त नहीं रह जाएगी, क्योंकि मैंने अभी बुराई देखी ही नहीं, मैंने दुख देखा ही नहीं। क्योंकि ये जो हमारा अनुभव है ना, याद रखिए ये अनुभव तुलनात्मक होता है, तुलनात्मक। क्योंकि अगर हमारे पास उसकी तुलना करने के लिए कोई उसका विपरीत अनुभव नहीं है, तो उसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। गौतम बुद्ध ने राजपाट क्यों छोड़ा? क्योंकि उनके पास जीवन के विपरीत का कोई अनुभव ही नहीं था। शुरू से राजशाही में पले, उन्होंने दुख देखे ही नहीं थे, तो चूंकि दुख देखे ही नहीं थे इसीलिए उनके लिए राजपाट के सुख का कोई अर्थ ही नहीं था। ये कभी गलत फहमी में मत रहिए कि गौतम बुद्ध ने इतना सुख छोड़ दिया, वो तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि यार देखो, राजा थे, फर्स्ट क्लास उद्यान था, अच्छी पत्नी थी, बेटा था, राजकुमार थे, सब सुख सुविधाएं थी, उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तुलना करने के लिए एक दूसरा मस्तिष्क है जो दुख से भरा हुआ मस्तिष्क है, जहां परेशानियां हैं, जहां संकट है, जहां हम जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। तो हमको राजपाठ में सुख दिखाई दे रहा है, गौतम बुद्ध को तो दिखाई ही नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने छोड़ा, क्योंकि उनके पास तुलनात्मक मस्तिष्क नहीं था। मित्रों, आप कल्पना करके देखिए, आप अपने कभी एक दुश्मन के बारे में सोच करके देखिए, अपने शत्रु के बारे में सोच करके देखिए, अपने विरोधी के बारे में सोच करके देखिए कि वो कौन है। थोड़ा सा विचार कीजिए कि जो आज आपका दुश्मन है या विरोधी है, जो भी आप उसे नाम देना चाहें, वो कौन है? तो आपको उत्तर मिलेगा कि नहीं, ये तो वही है जो कभी मेरा दोस्त रहा था, कभी मेरा भाई था, भाई तो आज भी है अगर भाई होगा तो, मेरा पड़ोसी था, मेरे साथ ही था, वही आज मेरा दुश्मन हो गया। तो निराशा बढ़ जाती, यार देखो मेरा दोस्त और मेरा ही आज दुश्मन हो गया। इसको आप द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के साथ जोड़ करके देखिए, आपका दुश्मन कौन हो सकता है? जो आपका दोस्त होगा वही आपका दुश्मन हो सकता है। सड़क पर चलते हुए आदमी का आपसे क्या लेना देना? जिसको आप नहीं जानते, जो आपको नहीं जानता, उससे आपका क्या लेना देना? वो आपका क्यों दुश्मन बनेगा? वो आपका क्यों विरोधी बनेगा? वो आपका क्यों प्रतिद्वंदी बनेगा? तो प्रतिद्वंदी या विरोधी तो वही बनेगा ना जो आपका रहा हो, आपका अपना कभी रहा हो। जो आज अपना है वही पराया हो सकता है, जो आया है वही जा सकता है, जो आया ही नहीं है वो कैसे जाएगा? मित्रों, समझने की कोशिश कीजिए, आया हुआ सुख ही जाएगा, और जब आया हुआ सुख चला जाएगा तो वह दुख में परिवर्तित हो जाएगा। जो है उसी को ही हम खो सकते हैं, जो है ही नहीं उसको कोई भला कैसे खो सकता है? दोस्तों, ये जिंदगी का बहुत जबरदस्त सिद्धांत है और जीवन का सत्य है, ये प्रकृति का सत्य है, ये विज्ञान का भी सत्य है कि जो वस्तु बनी है उसे नष्ट होना ही होना है। हां, यह बात अलग है कि जितना वक्त उसे बनने में लगा है, बट नेचुरल है कि उतना वक्त उसे नष्ट होने में लगेगा। इसे आप जीवन पर मत अप्लाई कर लीजिएगा कि बच्चा तो मां के गर्भ में 9 महीने ही रहता है तो वो 60 साल तक जीवित रहता है, इसको इस रूप में मत सोचिएगा। हम एक बहुत ही लार्जर सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, वक्त हो चुका है, मैं अब इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर आप लोगों से प्रतिक्रिया मिलेगी तो फिर मैं कल इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बहुत ही मूलभूत सिद्धांत की बात बता रहा हूं कि इस नजरिए से देखिए किसी भी चीज को, किसी भी घटना को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के तहत समझने की कोशिश कीजिए, आप देखेंगे कि आपका दुख कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, कम हो जाएगा। हां, जैसे ही कम होना शुरू होगा बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। बहुत से दुख दर्द हमारे खत्म हुए ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको लेकर के अपने साथ बैठे हुए हैं, बस चुनौती यही है कि हम कितनी जल्दी उनसे मुक्त हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि यह जो सोच है यह जल्दी से जल्दी मुक्त कराने में मदद करेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज के लाइफ मैनेजमेंट को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।